उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सब लोग साधक हैं। साधक होने के नाते अपने साध्य से भी परिचित हैं। क्या चाहते हैं? तो जीवन को ऐसा देखना चाहते हैं कि जिसमें मृत्यु का भय न हो, आनंद और प्रेम का रस कभी घटे नहीं, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वास्तविक जीवन करते ही है उसको कि जिसमें दुख न हो, भय न हो, मृत्यु न हो, अभाव न हो, और जो सामर्थ्य ज्ञान और प्रेम से भरपूर हो, उसी को जीवन कहते हैं। उसके विपरीत इस वर्तमान क्षण में अपना जो परिचय हम पा रहे हैं, यह जीवन का परिचय नहीं है, यह तो एक दशा का परिचय है जो आगे चलकर बदल जाने वाली है। एक दशा का परिचय है। दशा क्या है? मैं बहुत दुखी हूँ, ये दशा है, वास्तविकता नहीं है। दशा क्या है? मैं बहुत सुखी हूँ, तो ये जीवन नहीं है, ये आगे चलकर बदल जाने वाला है। तो जिसमें परिवर्तन होता रहे, जो बनता बिगड़ता रहे, उसको अवस्था कहते हैं, दशा कहते हैं, उसको जीवन नहीं कहते हैं। और सचमुच से हमारे भीतर जिसकी मांग है उसी को जीवन कहते हैं। तो अब अपनी अपनी ओर देख लीजिए, अपने भीतर क्या मांग है, तो अवश्य ही प्रत्येक भाई बहन यह कहेंगे कि भाई मुझे तो दुख रहित जीवन चाहिए, भय रहित जीवन चाहिए, सामर्थ्य ज्ञान और प्रेम से संपन्न जीवन चाहिए, ऐसा आप बताएंगे, क्योंकि यह मानव मात्र की मांग होती है। तो स्वामी जी महाराज ने जीवन की जो खोज की, उस खोज के आधार पर उन्होंने हम लोगों को बताया कि भाई तुम्हारे भीतर वह सब तत्व विद्यमान है जिसकी तुम मांग अनुभव करते हो। सत्य भी विद्यमान है, ज्ञान और प्रेम भी विद्यमान है, शांति और सामर्थ्य भी विद्यमान है, तो ये सब तुम्हारे भीतर है जिसकी तुम मांग अनुभव करते हो। तो अब प्रश्न क्या आएगा हम लोगों के सामने कि हमारे ही भीतर वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, तो फिर हम अपने को उससे दूर क्यों अनुभव करते हैं, उससे वंचित क्यों अनुभव करते हैं, उसके बिना परेशान क्यों रहते हैं, उसके विपरीत हमारी गतियां क्यों होती हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो उत्तर क्या मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में एक होती है मांग और एक होती है इच्छा, दो भाग हैं उसके। तो मांग कहते हैं उसको जो सत्य से मिला दे, स्वाधीन कर दे, जीवन को भरपूर कर दे, और इच्छा कहते हैं उसको जो संसार से जुटा दे, पराधीन कर दे, और जिसका अंत अभाव तथा बेबसी में हो जाए। अब बड़े दुख की बात है कि इन तथ्यों को अच्छी तरह से जान लेने के बाद भी मैं अपने को देख करके बोल रही हूँ, दूसरा कोई भाई बहन श्रोता समाज में से ऐसा बैठा हो कि जिसको जिसकी यह दशा खत्म हो गई हो तो वो बुरा न माने। तो मैंने जो देखा है साधन काल की अपनी दुर्दशा उसने क्या देखा है कि मांग और इच्छा के स्पष्ट अंतर को जानते हुए भी अगर इच्छा पूर्ति का कोई चांस दिखाई देता है तो हम अपने को उससे बचा के नहीं रखते। परिस्थिति नहीं बने तो बात दूसरी है, तब तो हम ज्ञानी बन के अपना काम चलाएंगे ही। होता है ऐसा, कोई संकल्प उठा और उसके पूरे होने की उम्मीद नहीं है, तब तो हम ज्ञानी बन के काम चलाते हैं। छोड़ो संकल्प को, संकल्प पूर्ति मेरा जीवन नहीं है, संकल्प पूर्ति से सत्य नहीं मिलता। मैंने खुद किया है यह सब, अंदाजी बात में नहीं बोल रही हूं। जिस किसी को लगाना हो घटाना हो अपने पर घटा लो, और जिसको बचना है इससे बच के रहो। लेकिन सच्ची बात है कि जब संकल्पों की पूर्ति का अवसर नहीं दिखाई देता है तो बड़ी चेतना रहती है। कुछ परवाह की बात नहीं है, मैं तो साधक हूँ, मेरा अमुक संकल्प पूरा नहीं हुआ तो उस संकल्प का त्याग ही अच्छा है। संकल्प पूर्ति जीवन नहीं है तो उस समय भीतर से एक बड़ा बढ़िया बल दिखाई देता है और किए हुए सुने हुए सत्संग का एक प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन समय समय पर मैंने ऐसा पाया कि जहाँ संकल्प पूर्ति की अनुकूल परिस्थितियाँ दिखाई देती हों वहाँ हम संकल्पों से बच के रहें, ये सावधानी कभी कभी खत्म हो जाती है। जब दिखाई देता है कि कोई ऐसा सहायता करने के लिए खड़ा हो गया कि जो कह रहा है कि आपको जो चाहिए बताइए, हमसे कुछ काम ले लीजिए, हमारे से कोई मदद ले लीजिए, हमारी कोई सेवा स्वीकार कर लीजिए, तो अहम का पोषण भी हो गया। मैंने थोड़े कहा था कि आप मेरी मदद कीजिए, वो सज्जन को खुद ही आए तो अहम का भी पोषण हो गया कि मैंने कहा नहीं था, वो तो अपनी खुशी से आकर के मेरे सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कोई काम बताओ, कोई सेवा बताओ, तो मैंने बता दिया, तो अहम का भी पोषण हो गया और संकल्प पूर्ति का भी पोषण हो गया। कह दिया मैंने, अच्छी बात, आपको मेरा काम करने में हर्ष होता है तो कर लाओ अमुक काम, तो संकल्प की पूर्ति भी हो गई, अहम का पोषण भी हो गया और निःसंकल्पता की शांति कुछ काल के लिए खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई अब मैं और बताऊं आपको। अब कच्चा चिट्ठा खोलना ही हो तो डरने की क्या बात है। अब क्या हो गया कि किसी आदमी ने मेरे संकल्प की पूर्ति में कुछ करने को कहा और मैंने हाँ कर दिया और वो करने के लिए चला गया, तो जब तक वो करके लौटेगा नहीं तब तक शांति और समाधि को गई। अब थोड़ी थोड़ी देर पर ध्यान आ रहा है, मेरी अमुक इच्छा की पूर्ति के लिए वो सज्जन गया और देखो करके आता है कि नहीं, पूरा होता है कि नहीं, पूरा हो गया तो अच्छा, क्या हो गया। इस दुर्बलता को अपने लोगों को पकड़ के रखना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इसका नाश करने के लिए सदैव सावधान रहना चाहिए कि भाई प्रतिकूलता में तो झक मार के या ज्ञान पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक अपने संकल्पों का त्याग तो सबको करना ही पड़ता है। प्रतिकूलता की घड़ी में तो छोड़ना ही पड़ता है, बिना छोड़े काम नहीं चलता। लेकिन संकल्पों की पूर्ति की अनुकूलता सामने आ गए और उस समय भी सावधानी पूर्वक मैं निःसंकल्प रह सकूं तो कदम आगे बढ़ सकता है। योगवित होने में बाधा क्या है? संकल्प पूर्ति का सुख और संकल्प अपूर्ति का दुख। और कुछ बाधा नहीं है। तो योगवित होने में यही बाधा है और तत्ववित होने में यही बाधा है और भगवत भक्त होने में यही बाधा है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, अब अपने अपने अध्ययन की बात है, अध्ययन करके देखिएगा, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बहुत ही शांत और निश्चिंत होकर के बैठ गया है आदमी, भगवत शरणागति लेकर के प्रयत्न होने के लिए, अहम तृति शून्य होने के लिए, अच्छी बात है। उसी समय उसी बीच में कहां तो आप जा रहे थे देहातीत जीवन की ओर, अप्रयत्न होना मतलब देहातीत जीवन में पहुंचना, सब प्रकार के प्रयत्नों से अपने को बचा लेना, तो स्थूल कर्म नहीं है, चिंतन नहीं है, किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं है, यहाँ तक कि संकल्प रहित होते ही अहम स्फूर्ति भी बंद हो जाती है, अहम में किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं होता है। और जब ऐसा हो जाता है एक क्षण के लिए भी कि अहम में किसी प्रकार का स्फुरण न हो, तो उसी समय अपने ही में विद्यमान सत्य के स्पर्श का अनुभव होता है। ये तो आनंदमयी माता जी के शब्द हैं, सत्य के स्पर्श का अनुभव होता है। और स्वामी जी महाराज की भाषा ये है कि सत्य के संग में होने का आनंद आ जाता है। दोनों संतों के दो वाक्य मैंने अपने लिए याद करके रखे। जिस क्षण में आप थोड़ी देर के लिए सही अहम स्फूर्ति से शून्य हो जाए, कोई संकल्प नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो संकल्प खत्म हो गया, तो संकल्पों का स्फुरण भी खत्म हो गया, तो सारी गतियां सब शक्तियां जा करके अहम में शांत हो जाती हैं। अहम स्फूर्ति जिस समय बंद हो गई, उसी समय सत्य के स्पर्श का अनुभव। तो स्पर्श के अनुभव से मैंने क्या अर्थ लगाया, शांति काल में जिन भाई बहनों को अनुभव है उनको मालूम है, और जिनको अनुभव नहीं है वे अनुभव ले सकते हैं। क्या होता है सत्य के स्पर्श का अर्थ क्या है, कि भीतर से एक ऐसी आनंददायिनी लहर उठती है कि जिसमें पहले तो रोम रोम मालूम होगा कि बहुत आनंदित पुलकित हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद इस प्रकार का अनुभव करने वाला संपूर्णता से उस अनुभव से एक हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अपने ही भीतर से एक आनंददायक अनुभूति की स्फूर्ति होती है, एक भाव प्रधान व्यक्तित्व में प्रेम के भाव का उद्रेक होता है, रस से सारी क्रियाएं शरीर की बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाती हैं, और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उस क्षण की तुलना संसार के किसी भी ऊंचे से ऊंचे सुख भोग की प्रवृत्ति से नहीं की जा सकती। इतना ही, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है। तो आनंदमयी माता जी के साहित्य में लिखा है कि अहम के स्फुरण बंद होने से तत्काल ही सत्य के स्पर्श का अनुभव होता है। तो सत्य का स्पर्श तो अनेक रूपों में हो सकता है, सामर्थ्य के रूप में हो सकता है, आनंद के रूप में हो सकता है, प्रेम के रूप में हो सकता है, फिर शांति के रूप में हो सकता है, अनेक रूपों में हो सकता है, और उसकी कोई परिभाषा नहीं बनाई जा सकती, कोई परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। जो अनुभव करता है वही करता है, और वो जब भाषा बना के कहने लगता है तो सचमुच वो क्या अनुभव कर रहा है पूरी पूरी बात भाषा में प्रकट नहीं हो सकती। ऐसा है वो अनुभव। ये किसको होता है? ये सिद्ध पुरुष की चर्चा नहीं है, ये साधक के जीवन की चर्चा है, जिसमें प्रवृत्ति काल में थोड़ी थोड़ी देर के लिए भगवत समर्पण का भाव लेकर के शांत रहने की चेष्टा की, उस साधक के जीवन की चर्चा ये है। तो ऐसा होता है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, सत्य के संग में तो तुम नित्य निरंतर रहते ही हो, जब तक तुम शरीरों का तादात्म्य ले करके घोर प्रवृत्ति में रत हो रहे हो, उतनी देर तक तुम्हें उसका पता नहीं चलता। और जब सही प्रवृत्ति के बाद सहज निवृत्ति की शांति में आ जाओ, तो उस समय का जो जीवन है तुम्हारा, उसमें सत्य के संग में होने का अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो एक ही बात है, सत्य के स्पर्श का अनुभव कहो या सत्य के संग में होने का अनुभव कहो। तो मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होगा, इस बात का पता चल जाता है आदमी को शरीर के तादात्म्य के टूटते ही। ये भी साधन काल की चर्चा है, ये सिद्ध जीवन की चर्चा नहीं है। सिद्ध जीवन का तो क्या होता होगा वो तो सिद्ध महापुरुष जाने। और मैंने तो ऐसा सुना है कि जब सब तरह से जीवन में पूर्णता आ जाती है, तो उसके बाद जो भी कुछ अनुभव होता होगा उसको शब्दों में बांध सकना संभव नहीं होता है। तो अनुभवी संतजन जगत कल्याण के लिए सांकेतिक भाषा में कुछ कुछ कह दिया करते हैं, पूरी तरह से कोई कह ही नहीं सकता। तो इस दृष्टि से अपने लोगों के लिए ध्यान देने की बात ये है कि भाई, प्रत्येक दशा में हम सभी भाई बहनों को अपने संकल्पों की पूर्ति से अपने को बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। तब आप कहेंगे कि प्यास लगी है और जल चाहिए अपने को, तो कैसे नहीं जल की आवश्यकता अनुभव करें और कैसे नहीं जल उठाकर पिए, ऐसा आप कह सकते हैं। तो संकल्प रहित होने का अर्थ ये नहीं होता है कि शरीर की सेवा को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात केवल इतनी सी है कि वर्तमान परिस्थिति में प्यास बुझाने के लिए जल अगर उपलब्ध है तो उसे लेकर के अवश्य ही शरीर की सेवा कर दीजिए, इसमें तो कोई संकल्प की बात है ही नहीं है। और आप सोच करके देखिए कि शरीर की सेवा के लिए जो जरूरत मालूम हुई, उसकी पूर्ति के की सामग्री अगर आपके सामने है, तो वो कार्य रूप में बदल जाएगा कि संकल्प के रूप में बैठा रहेगा? जी, कार्य रूप में बदल जाने पर उसको संकल्प नहीं करते हैं, तो वर्तमान कर्तव्य कर्म हो गया। लेकिन जैसा मिल रहा है और जो उपलब्ध है उससे संतोष न करके उसको पीते भी जाओ और भीतर भीतर चिंतन में पड़े रहो, फ्रीज होता तो बड़ा अच्छा था, ठंडा ठंडा जल पीते, ये क्या हो गया? ये संकल्प हो गया। अब होता तब ना, अब है नहीं तो उसके चिंतन में क्यों पड़े हो? चिंतन में मत रहो, जो उपलब्ध है काम करके खत्म करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चिंतन में तो सत्य रहना चाहिए, तुम्हारे चिंतन में तो पर पीड़ा से द्रवित सेवा का कार्य रहना चाहिए। तुम्हारे चिंतन में तो तुम्हारे परम प्रेम आस्पद रहना चाहिए। अब ठंडा जल मिट्टी के घड़े में से रखा हुआ मिल गया तो उसे संतोष ना करके और फ्रिज के चिंतन में क्यों पड़े हो? क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रिज का पानी जो है वो हमेशा के लिए तुम्हारी प्यास बुझा दे, आवश्यकता खत्म कर दे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अनेक बार तो नुकसान पहुंचाते देखा गया है। मैं तो कभी पी नहीं सकती, डर लगता है गला खराब हो गया तो सब मजा ही चला जाएगा, अपना तो बोलना ही काम है। इस यंत्र को ठीक ठाक रखने के लिए मैं फ्रिज का पानी कभी छूती ही नहीं हूँ, डर तुम्हारे तो वो तो अनिवार्य तत्व नहीं है ना। अनिवार्य तत्व न होने पर भी उसके चिंतन में पड़े रहना ये भूल है, उसके संकल्प में बंधे रहना ये भ्रम है। तो एक उदाहरण मैंने अपने लोगों के सामने रखा कि जिससे अपनी चेतना बनी रहे, सावधानी बनी रहे तो आगे काम हो जाएगा। केवल संकल्पों की उत्पत्ति मात्र से मनुष्य के व्यक्तित्व के मूल में जो जो अविनाशी शांति विद्यमान है वह शांति भंग हो जाती है। केवल संकल्पों की उत्पत्ति मात्र से शांति भंग हो जाती है। और पूर्ति हो गई तो राग बढ़ गया, और पूर्ति नहीं हुई तो क्षोभ बढ़ गया। तो उत्पत्ति में मेरी शांति चली गई और पूर्ति में मेरी स्वाधीनता चली गई है। राग बढ़ गया तो स्वाधीनता चली गई ना। जिस व्यक्ति ने मेरी इच्छा पूर्ति में सहयोग दे दिया तो मेरे भगवान की जगह पर, मेरे इष्ट की जगह पर उस व्यक्ति का चित्र मुझे दिखाई देने लगा। तो स्वाधीनता हुई कि पराधीनता हुई? जी पराधीनता हुई। तो देख लो तमाशा उसका। संकल्पों की उत्पत्ति हुई तो बैलेंस चला गया, संतुलन चला गया, मौलिक शांति खत्म हो गई। मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकल टर्म एक काम में देते हैं, कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो पर्सनैलिटी में से, व्यक्तित्व में से इक्विलिब्रियम गया। इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या है कि जिस समय किसी प्रकार की आवश्यकता बाहर से आपको मालूम नहीं होती है, बाहर से वस्तु लेने की, उस समय आप अपनी स्वाभाविकता में स्थित होते हैं। और जैसे कोई संकल्प उठा वो इक्विलिब्रियम बदल गया, बिगड़ गया। क्या हो गया कि अब मैं अपने स्वरूप में, अपनी स्वाभाविकता में न रह करके वस्तुओं की ओर खींच गया। तो वृत्ति चली गई संसार की वस्तुओं में, तो आप अपनी जगह पर स्थित नहीं रहे। उत्पत्ति ने मुझको अपनी स्वाभाविक शांति से दूर कर दिया, और कहीं उस संकल्प की पूर्ति हो गई तो पूर्ति ने मुझको सुख भोग की जड़ता में डुबा दिया। आदमी किसी भी प्रकार के सुख भोग की प्रवृत्ति में जब लग जाता है तो वो जड़ता में आबद्ध हो जाता है, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, और वस्तु के संयोग का सुख आदमी को बिल्कुल जड़ बना देता है। एक युवक स्वामी जी महाराज के पास आया करते थे। महाराज जी को तो इस बात में बड़ा आनंद आता था, गीता भवन में उन दिनों में शुद्ध घी की बनी हुई गरम गरम जलेबियां स्वामी जी के पास बहुत आती थी। महाराज जी तो खाते नहीं थे लेकिन सबको मालूम था कि इनके पास बहुत लोग रहते हैं तो उनके लिए दे जाते। तो स्वामी जी महाराज उस युवक को जब गरम जलेबियां खिलाते तो 4 बजे भोर में किया हुआ सत्संग उसको याद आता और कहता है कि महाराज नितनो रस तो इन जलेबियों में है। प्रातःकाल चर्चा हुई थी, प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में नितन और रस का आदान प्रदान चलता है। नितन और रस का क्या मतलब है कि वह रस ऐसा अद्भुत है कि प्रत्येक क्षण में नया 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 आनंद देता है, प्रेमी को भी, प्रेमास्पद को भी, भक्त को भी, भगवान को भी। आप लोगों ने सुना भी होगा और महाराज जी के साहित्य में पढ़ा भी होगा, नितनौ रस उसको बताया है महाराज जी। तो वो युवक जब न तब वो गरम गरम जलेबी खाए मीठा मीठा स्वादिष्ट और कहे कि महाराज जी नितनौ रस तो इन जलेबियों में है। क्या होता है कि सुख भोग काल में व्यक्ति जड़ हो जाता है, चेतना से अलग हट करके वस्तु से, शरीर से और विषय भोगने वाली इंद्रियों से इतना उसका तादात्म्य हो जाता है कि वो निज स्वरूप को भी भूल जाता है, निज परमात्मा को भी भूल जाता है। तो संकल्प की पूर्ति हुई तो परिणाम क्या हुआ कि हम चेतना से जड़ता के स्तर पर आ गए, स्वाधीनता से पराधीनता में बंध गए। किस प्रकार की पराधीनता हो गई कि आज किसी ने बढ़िया बढ़िया भोग वस्तु ला करके दे दिया तो रह रह के उस वस्तु की भी याद आ रही है, रह रह करके उसमें सहयोग देने वाले की भी याद आ रही है, निज स्वरूप की विस्मृति हो गई, परमात्मा की याद तो बड़ी दूर चली गई। बड़ा सज्जन आदमी है, बड़े मौके पर काम आ जाता है, बड़ा सुख दिया उसने, अब कर लो ध्यान इसका। तो स्वाधीनता है कि पराधीनता है? पराधीनता है। तो संकल्प पूरे हुए तो आप पराधीन हो गए, संकल्पों की उत्पत्ति हुई तो आप शांति से विचलित हो गए, और कहीं प्रकृति के विधान से संकल्प पूरे नहीं हुए तब तो क्रोध और क्षोभ का कोई अंत ही नहीं। पहले अपने पर बिगड़ता है आदमी, मैंने बड़ी बेवकूफी की, फिर कहता है मेरे साथ ही बड़े नालायक हैं, मेरा साथ नहीं देते हैं, फिर कहता है समाज बड़ा बिगड़ गया, फिर कहते हैं संसार बड़ा बिगड़ गया, और नाराज होते हैं तो कहते हैं परमात्मा किसी काम के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो चाहा तो उन्होंने पूरा नहीं किया, सब नालायक हो गए, सब बेकार हो गए, अपना भी कुछ मूल्य नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई? क्योंकि हमने जो चाहा तो पूरा हुआ ही नहीं। तो ये दशा जो है, ये दशा मेरे कहने से आपको मालूम हो गई है कि जीवन के इस लंबी अवधि में आपने अपने द्वारा अनुभव किया है, अनुभव किया हुआ है ना, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ ये है कि अपनी दशा का अध्ययन करो और जो त्याज्य प्रमाणित हो चुका है, एक बार नहीं अनेक बार, जो त्याज्य प्रमाणित हो चुका है उसका त्याग कर दो। तो आज का पाठ क्या रहा? क्या रहा पाठ? अपने संकल्पों का त्याग, समाज के लिए हितकारी संकल्प का त्याग नहीं, अपने संकल्पों का त्याग। जिस संकल्प का संबंध मेरे व्यक्तिगत सुख से है उन संकल्पों का त्याग कर दो, जिन संकल्पों का संबंध कुटुंब परिवार और समाज के हित से है उन संकल्पों को समष्टि शक्ति के आधार पर, समष्टि के संकल्प से मिला करके वर्तमान में काम हो सके तो काम कर दो, और नहीं हो सके तो उस संकल्प का भी त्याग कर दो। तो मैंने स्वामी जी महाराज को करते हुए देखा है। महाराज जी के पास तो सब तरह के लोग आते थे, गृहस्थ लोग भी आते थे, लड़कों की बच्चों की पढ़ाई है तो लड़कियों की शादी है तो माता पिता का काम है तो खेत उलझा हुआ है तो ये वो सब समस्याएं आती थी, और उससे भी ऊंचे समाज सेवक आते थे, संस्थाओं की सेवा करने वाले आते थे, तो क्या बताएं कमिटी के लोग समझते नहीं हैं, क्या बताएं ट्रस्टी वालों की समझ में नहीं आ रहा है, ये मामला गड़बड़ हो रहा है, वो मामला गड़बड़ हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं आती। तो महाराज जी कहते कि देखो भाई, इस समस्या में तुम उलझे क्यों हो? सेवक का काम तो उलझना नहीं है। अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है तो समझा करके इस काम को पूरा करो, और नहीं है तो समष्टि के संकल्प में मिला करके छोड़ दो। तुम्हारे द्वारा नहीं होगा ये काम, और सचमुच ये काम संस्था के लिए हितकारी है तो समष्टि शक्ति में इस संकल्प को मिला दो, कह दो कि अगर ये संकल्प संस्था के लिए शुभ है, समाज के लिए शुभ है, संसार के लिए शुभ है, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, समष्टि की सामर्थ्य से ये काम हो जाएगा, कह करके तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दोगे तो जगत के संकल्प में वो संकल्प मिल जाएगा, और समष्टि की शक्ति से काम होने लग जाएगा, तो तुम्हारे ट्रस्टी उसमें बाधा नहीं बना सकेंगे। ट्रस्टी तो 5-7 होते ना, तो समष्टि की शक्ति से काम होने लग जाएगा तो 2-4 जन 5 जन 10 दर्जन का विरोध कुछ काम नहीं करेगा। बहुत बार मैंने सुना स्वामी जी महाराज से कि तुम उलझते क्यों हो? तो आदमी कब उलझता